ओम शांति। नमा शाम की इस मधुर बेला में हमारे बीच आदरणीय संतोष दीदी उपस्थित हैं। आज भट्टी के शुभारंभ में हम आपसे भट्टी में या इस तपस्या और साधना के बीच हम बहुत सुंदर गहन अनुभूति करके जा सकें, इसके लिए अपनी प्रेरणाएं व दिल के उद्गार हमारे सामने रखेंगी आदरणीय संतोष दीदी, महाराष्ट्र जोन की टोटल सेवाओं को बहुत सुचारू रूप से संभाल रही हैं। मैं आदरणीय दीदी जी से नम्र अनुरोध करती हूँ कि इस भट्टी में से हम सब बहुत सुंदर अनुभव लेकर के जाएं, इसके लिए आप अपनी प्रेरणाएं और उद्गार रखें आदरणीय दीदी जी।
शांति। कितना बड़ा पांडवों का झुंड है। बाबा को पांडव पति कहते हैं तो उसका झुंड भी इतना बड़ा है। पांडवों में कौन सी शक्ति थी, क्या करने की शक्ति थी? पांडवों कंस्ट्रक्शन करने की शक्ति थी। तो बाबा ने आकर के पांडव सेना को अपना बना करके कितना आगे बढ़ा दिया। वैसे तो बाबा के सब बच्चे योगी बच्चे हैं, परंतु विशेष बीच बीच में ऐसी योग की भट्टियां रखी जाती है और सब भाग भाग के अपना कार्य व्यवहार छोड़ करके भट्टियों का लाभ लेने के लिए आते हैं, क्योंकि अलग अलग बैठ करके योग की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं तो कहां कहां लाइट दिखाई पड़ती है, कहां कहां अंधेरा दिखाई पड़ता है। परंतु संगठित रूप में जब बैठ करके हम सब एक की लगन में और एक ही मगन में बैठते हैं, एक ही संकल्प में बैठते हैं, तो उसका जो वातावरण बनता है वो वातावरण भी अनेक आत्माओं को साकाश देने के लिए निमित्त बनता है। कमजोर आत्माओं को भी ऐसे शक्तिशाली वातावरण का फायदा होता है और जिससे स्वतः ही उनका भी, नई योग लगने वालों का भी योग लग जाता। तो हम देखते हैं कि ये जो भट्टियां हैं इसमें विशेष एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने का ध्यान दिया जाता। एक ही बाबा की याद, एक की लगन में मगन, एक के साथ ही हमारे सर्व संबंध है। जब उस एकाग्रता की स्थिति में बैठते हैं तो एकाग्रता के द्वारा एक के अंत में जब चले जाते हैं तो उससे हमें बहुत ही प्राप्तियां होती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा ही मेरा परिवार है, बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है, इन सर्व संबंधों की अनुभूति तुम ऐसे संगठन में सहज कर सकते हो जो ज्यादा समय बाबा की लगन में मगन होकर के बैठते हैं। तो बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, उसकी अनुभूति और उसकी प्राप्ति हम बच्चों को होती है। वर्तमान समय देखा जावे, अभी जो चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति भी समाप्ति का डंका बजाती है, परिस्थितियां भी हमें चेतावनी देते हैं और बाबा तो हमेशा बच्चों को सावधान करते ही रहते हैं। किस समय पर अंतिम समय आएगा ये तो कोई फिक्स नहीं बता सकता है, और बाबा कहता है मैं भी कभी फिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम फिर सोल कॉन्शियस के बदले डेट कॉन्शियस हो जाए, तारीख कोई देखते रहेंगे, आज कितनी तारीख हो गई, अभी कौन सा मास चल रहा, अभी कौन सा बरस चल रहा। इसीलिए ड्रामा माना ही जो अचानक होता है उसका नाम ड्रामा। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें विनाश का इंतजार नहीं करना है परंतु इंतजाम करना है। तो वो जो इंतजाम हमें करना है वो इंतजाम करना है अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, अपने पास गुणों का स्टॉक जमा करना है, अपने पास ईश्वरीय प्राप्तियों का स्टॉक जमा करना है। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार, वैसे भी देखो लौकिक में जिसका बड़ा परिवार होता है तो जो संभालने वाला होता है परिवार परिवार को, तो उसको विशेष ध्यान रहता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए मुझे बहुत ध्यान दे करके इकोनॉमी से परिवार को चलाना है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा बहुत बड़ा बेहद का परिवार है, जितना बाबा बड़ा है उतना परिवार भी बड़ा है, तो तुम इतने बड़े बेहद परिवार के हो, ये सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार है, तो इसीलिए तुम बच्चों को अपने संकल्पों की अपने समय की बहुत बहुत इकोनॉमी करनी। क्योंकि अगर तुम्हें समय और संकल्पों की इकोनॉमी नहीं आती है तो तुम अपने पास स्टॉक जमा नहीं कर सकते हो, अगर स्टॉक ही जमा नहीं करेंगे तो अंत के समय जो लेने वाली आत्मा है उनको तुम क्या देंगे। अभी तो ऐसा होता है ना, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, कोई प्रश्न पूछता है, कोई बात हम नहीं समझा सकते तो हम कहते हैं ठीक है हमारी बड़ी बहन आके आपको समझाएगी, आप उनके पास चलो, उनका बहुत अच्छा अनुभव है, वो आप करके आपको बैठ के स्पष्ट करके बताएंगे। परंतु अंत के समय जब मनुष्य आत्माएं हमारे पास तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं आएगी, आके सुख शांति मांगेगी, शक्ति मांगेगी, तो उस समय हम ये नहीं कहेंगे हमारी बड़ी बहन या बड़ा भाई आपको देगा, उस समय हमें ही उनको देना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपने पास स्टॉक को फुल करो, अगर तुम्हारा स्टॉक फुल भरा हुआ होगा सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से तो आने वाली आत्माओं को तुम तृप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए खास इस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपना समय अपना श्वास अपने संकल्प कुछ भी वेस्ट न जाए परंतु सफल हो, उसके लिए हम संगठित रूप में बैठ करके इन सब को सफल करने की जो विद्या है उसको सीखते हैं। और जितनी जितनी हमारी बुद्धि एकाग्र होती जाती है तो एक ही बाबा से हम सर्व शक्तियां सर्व गुणों का जो अधिकार है प्राप्ति है वो हमें होती है। मम्मा भी हमेशा कहती थी तुम बाबा को याद करके अपने में शक्ति भरते हो और सारा दिन फिर क्या करते हो बैठ करके शक्ति भरेगे थोड़ा समय और सारा दिन फिर शक्ति को यूज कर डालते, कभी यूज कर डालते कभी लूज कर डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है फिर तुम्हारा जो भरा हुआ भंडार है वो खाली हो जाता। तो इसीलिए हमारी जो शक्तियां हैं हमारे जो गुण हैं उसका भंडारा सदैव भरपूर रहे और हम दाता के बच्चे होने के कारण औरों को भी बांटते रहे, इसके लिए हम सब संगठित रूप में बैठ करके बाबा से सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूति विशेष करते हैं। क्योंकि जब यहाँ भट्टी के लिए आते हैं तो हरेक को ये लक्ष्य रहता है कि हम यहाँ से भंडारा भरपूर करके जावें, क्योंकि यहाँ आते ही इसी लक्ष्य से हैं। और हम देखते हैं अभी जैसा जैसा समय नजदीक आता जा रहा है समाप्ति का, तो समाप्ति के समय पर हमें दो शक्तियों की बड़ी आवश्यकता है, एक है टचिंग पावर और दूसरी है कैचिंग पावर। अगर ये दो शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम अगर बाबा ने हमें कुछ भी प्रेरणाएं टच किया अगर उन प्रेरणाओं को हम समझ सकें, बाबा की बातों को हम कैच कर सकते हैं, तो उससे क्या है हमें सफलता मिलती। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया है कि बच्चे अंत के समय पर तुम्हारा ये जो वायरलेस सेट है ये भी नहीं चलेगा, ये लाइट नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, अंत के समय ये सब कुछ निकम्मा हो जाएगा, बाकी क्या काम में आएगा तुम्हारे, तुम्हारा वॉइसलेस सेट काम में आएगा, वायरलेस नहीं काम में आएगी परंतु वॉइसलेस सेट काम में आएगा। तो वो संपूर्ण निर्विकारी बनने की जो कला है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का जो तरीका है, वो विशेष बाबा हम बच्चों को एकाग्रता के द्वारा अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको दग्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति देते हैं, जिस शक्ति के द्वारा हम अपनी कमजोरियों को दग्ध करते हैं और आत्मा शक्तिशाली बनती है। और जो हमारी शक्ति है वो फिर बाबा हम बच्चों को हमेशा ये बात समझाते हैं, ऐसा नहीं तुम शक्ति ही भरो और तुम ही अपने में ही खलास कर डालो, खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, ऐसा नहीं। बच्चे छोटे होते हैं ना तो समझते हमने कमाया हमने खाया ठीक रहा, परंतु जब उनके ऊपर परिवार की जवाबदारी पड़ती है तो तभी उनको ख्याल रहता है कि सिर्फ हमको कमा के हमको नहीं खाना है पर हमको परिवार को भी संभालना है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बात बताई है कि बच्चे ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इन सब मनुष्य आत्माओं के तुम पूर्वज हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों का स्थान कौन सा है कल्प वृक्ष में, तुम्हारा स्थान है मूल। आप कल्प वृक्ष में देखेंगे तो ब्राह्मण मूल में बैठे हैं, कल्प वृक्ष मूल का काम क्या होता है, सारे वृक्ष को जल देना, सारे वृक्ष को खाना देना, खाद देना, ये मूल का काम है। अगर मूल सड़ गया तो झाड़ सड़ जाता है, झाड़ सूख जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो विशेष जो एकदम चोटी पर पहुंच गए थे हम अंत में कल्प वृक्ष के अंत में पहुंच गए कलयुग के अंत में, वहां से उठा करके एकदम मूल में बिठा दी। मूल में क्यों बिठाया कि तुम सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो, अभी यहां मूल में बैठो और तपस्या कर करके क्या करो सारे वृक्ष को हरा भरा कर डालो, क्योंकि कल्प वृक्ष को सुखाने का भी हमारा विशेष उसमें सहभाग रहा, हाँ वो भी हमने सहयोग दिया विशेष। तो अभी वापस सारे कल्प वृक्ष को हरा भरा करना ये हमारा ही काम। तो जब ये हमें याद रहता है कि हमें सारे वृक्ष को, सर्व मनुष्य आत्माओं को हमें क्या करने का है, शक्ति देनी है, सर्व आत्माओं को सुख देना है, सर्व आत्माओं को शांति देनी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे होने के कारण हम देने वाले, तो देने वाले होने के कारण और सर्व के पूर्वज होने के कारण हमारी जो मनुष्यों की बिरादरी है इतनी बड़ी, हमारा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, हम उसके बच्चे हैं। तो जैसे बाबा को नशा रहता है कि मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, ब्रह्मा बाप को मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, तो हम बच्चे भी उसके साथ साथ क्या करते हैं, सृष्टि की पालना करने के लिए बाबा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जो हमें प्राप्तियां होती है वो सर्व को देने के लिए हम बांधे हुए हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाप का भी बहुत बड़ा ऋण है और ब्रह्मा का भी बहुत बड़ा ऋण है। इसको पितृ ऋण कहते, परमात्म ऋण और पितृ ऋण। तो परमात्म ऋण भी है और साथ साथ में उसके साथ प्रजापिता ब्रह्मा का भी ऋण है, वो भी हमें चुकतू करना है। तो बाबा इस समय हम बच्चों को जो भी पालना देता है वो पालना सर्व मनुष्य आत्माओं को मिले, सर्व को उसकी सुख शांति की किरणें मिले। बहुत बारी बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चे तुम्हें आवाज नहीं आता है, दुख और अशांत जो आत्माएं हैं उनकी आवाज तुम्हें नहीं आती है तड़पने की? क्योंकि कितनी बारी तो साकार बाबा की नींद फिट जाती थी और बाबा को कहते थे, बाबा आप सोए नहीं, तो बाबा बताते थे, बाबा कहता था नहीं, बांधे लिया पुकार रही है, दुखी हो रही है, तड़प रही है, तो वो तड़फन बाप के पास पहुंचती है, उनको साकाश दे रहे। तो बाबा के पास जैसी आत्माओं की वो तड़फन पहुंचती है, तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम भी जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं उनकी आवाज सुन के उनको तृप्त करें, उनको शांत करें, उनको सुखी करें। तो उसके लिए क्या चाहिए, योग की बहुत बड़ी पावर चाहिए। अगर हम अपनी आवाजों में रहते हैं, साकारी दुनिया तो आवाजों की दुनिया है, तो अगर हम अपनी आवाजों में बिजी रहते हैं, आवाज करने में और आवाज सुनने में, तो ऐसी तड़पती हुई आत्माओं का जो आवाज है वो हमें नहीं आता। जब उनका आवाज ही नहीं आएगा तो उनकी आशाएं हम कैसी पूर्ण करेंगे? तो इसीलिए बाबा ने जो हमें सुखदेव बनाया है, सबको सुख देने वाला, तो उसके लिए एकाग्रता की जो शक्ति है उसकी बहुत ही आवश्यकता है। और उस एकाग्रता की शक्ति को जमा करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को एक नामी बनाया। एक के बिगर और किसी का भी नाम तुम्हें कभी याद नहीं रहे, सदैव उस एक की याद रहे। और जितना जितना हम एक के नाम में रहते हैं, एक की याद में रहते हैं, उतनी उतनी हम संकल्पों की, शक्तियों की, प्राप्तियों की एकानामी कर सकते हैं। और जो वैसा भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है ना, ऐसा कोई प्लान बने आज के जमाने में, सोचती रहती है ऐसा कोई प्लान बने जिससे क्या होवे, इकोनॉमी भी होवे और उससे बहुत लोगों को रोजी रोटी मिले। तो हम बच्चों को भी जो हाई गवर्नमेंट है वो भी हमें प्लान देती है कि तुम्हारी सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों की इकोनॉमी भी होवे और सर्व मनुष्य आत्माओं को, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य आत्माओं को तुम्हारे द्वारा ईश्वरीय प्राप्तियां हो। तो इसीलिए हमारी बुद्धि सदैव बाबा के साथ लगी रहे, हमारी बुद्धि और कहाँ भी नहीं जावे, उसके लिए खास इस अभ्यास की क्या है, बहुत आवश्यकता है। और ये जो अभ्यास है ये संगठित रूप में जब बैठ करके हम करते हैं, तो संगठित रूप में किया हुआ जो अभ्यास है वो हमें क्या करता है, मदद देता है। क्योंकि संगठन में बहुत बड़ा बल होता है। आज कोई भी देखो स्थूल कार्य है, अगर दो व्यक्ति करते हैं तो उसको आधा घंटा लगता है, वही अगर चार व्यक्ति करते हैं तो 15 मिनट में कर सकते। तो जैसा स्थूल कार्य ज्यादा लोग अगर करते हैं तो जल्दी होता है, समय की इकोनॉमी हो जाती है, तो उसी प्रकार सारे विश्व में सुख और शांति फैलाने का जो कार्य है, वो जिस समय हम संगठित रूप में बैठ करके एक की याद में बैठ करके एकाग्र होकर के करते हैं, तो इसके वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते हैं। आप देखो, वैसा भी जो हठ योगी है उनके लिए भी कहते हैं कि योगियों के जो वाइब्रेशन है वो 36 माइल दूरी पर जाते हैं हठ योगियों के, परंतु हम राजयोगियों के वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते हैं। अच्छा, विश्व में नहीं जावे, जहाँ पर रहते हैं उतनी एरिया में तो जावे कम से कम, परंतु इतने अगर सब मिलकर के बैठ के, चारों तरफ के आए हुए सब मिलकर के अगर बैठ करके शांति के वाइब्रेशन फैलावे, तो आप क्या समझते हो सारे भारत में वो वाइब्रेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? आप लोगों का क्या विचार है? है, जा सकते हैं ना। तो इसीलिए आप यहाँ जो 3 दिन रहेंगे ना, तो ये आप ध्यान में रखना कि हम पूर्वजों के द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सारे विश्व को तो भले आप साकाश दो, परंतु विशेष भारत को हमें क्या करना है? भारत को पावन बनाना है, सारे विश्व को पावन बनाना है। इसीलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा करके, एक नामी बन करके और बाबा की याद में बैठ करके ऐसा वायुमंडल फैलाना, ये तो है ही शांतिवन, नाम ही इसका शांतिवन है, परंतु इस शांतिवन के द्वारा ऐसी चारों तरफ शांति की किरणें फैले जो अशांत आत्माएं भी क्या हो जावे, शांत हो जावे। क्योंकि अभी देखते ना, प्रकृति की इतनी हलचल है और प्रकृति की हलचल होने के कारण मनुष्य आत्माएं बिचारी बड़ी अशांत हो गई, प्रकृति तंग हो गई है ना मनुष्यों से बहुत, अभी उसने तंग करना चालू कर दिया है। कोई व्यक्ति तंग हो जाता है तो क्या करता है? फिर सामने वाले को तंग करना चालू करता है। तो वैसा बाबा कहता है, ये प्रकृति को मनुष्य ने बहुत तंग किया है, बिचारी ने बहुत सहन किया है, अभी सहन कर करके इसने तंग करना चालू किया है। तो जब प्रकृति ने तंग करना चालू किया है तो मनुष्य बहुत तंग हो गए। तो अभी इसीलिए ऐसे समय पर उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। ऐसे समय पर उनको सहन करने की शक्ति चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, तो उस समय अगर शक्ति नहीं होगी, सहन करने की शक्ति, तो मनुष्य आत्माएं सब साधन होते हुए भी बहुत दुखी और अशांत हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास बाबा ने बहुत बड़ा स्टॉक दिया हुआ है, इसका वरदान दिया हुआ है हमें, शक्तियों का और शांति का। तो हमारा काम है, हमको जो मिला है हम सिर्फ खुद के लिए यूज नहीं करें, परंतु ऐसी आत्माओं को भी उसका फायदा दे करके उससे उनका भी उद्धार करें। और जैसा जैसा समय नजदीक आता है तो अनेक आत्माएं भाग भाग करके आकर के बाबा का बनती है। आप खुद भी अनुभव करते हो ना, पहले लोगों को बुलाना पड़ता था आओ, तो भी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, अभी लोग सामने से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इस समय पर इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आवश्यकता के समय अगर किसी को कोई प्यासा है, उसको अगर आप पानी पिलाते हैं, इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। तो इस समय सब मनुष्य आत्माएं सुख और शांति की अति प्यासी हैं। तो इस समय अगर हम उनको शांति के और सुख के वाइब्रेशन देते हैं, तो हमारा पुण्य क्या होता है? सदा के लिए जमा हो जाता है। तो वैसे तो यहाँ सब पुण्य आत्मा ही है बाबा के बच्चे, पर विशेष और भी पुण्य को जमा करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। तो जरूर आप लोग इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे, खुद भी लाभ लेंगे और अन्य आत्माओं को भी इसका लाभ देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज के इस पट्टी का शुभारंभ करने के लिए हम सबके बीच परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी उपस्थित हैं, साथ ही आदरणीय ईशु दादी, आदरणीय संतोष बहन, आदरणीय मुन्नी बहन हम सबके बीच हैं। हम सब एक हाथ की ताली से सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुन्नी बहन से नम्र अनुरोध करती हूँ, बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह इन भट्टियों का आयोजन करके आदरणीय मुन्नी बहन ने हम सबको इस विशेष साधना के लिए बुलाया है। आपके दिल में भी हम सबके लिए इस तपस्या भट्टी के लिए बहुत बहुत उम्मीदें हैं और एक बहुत सुंदर भविष्य का विजन है। मैं आदरणीय मुन्नी बहन से निवेदन करती हूँ कि वे सर्वप्रथम हम सबका स्वागत भी करेंगी, साथ साथ अपने दिल के उद्गार भी रखेंगी। आदरणीय मुन्नी बहन।
स्टेज पे कुछ नहीं सुनता है, कोई क्या बोलता है? स्टेज पे कुछ सुनता नहीं है, कोई क्या बोलता है? ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, भारत के कोने कोने से अपनी संपूर्ण मौन भट्टी करने के लिए आइए दादी, आइए। अपनी संपूर्ण मौन भट्टी करने के लिए प्यारे बाबा के घर पधारे हैं, तो आप सभी चाहे अधर कुमार हैं चाहे कुमार है, सबके पीछे कुमारी है लगा हुआ है, तो सभी कुमारों का, अधर कुमार भी कुमारी ही है, इस समय तो पूरा ज्ञान योग में पक्का चलते हैं, तो सभी का मैं दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी प्यारे बाबा के घर आए हैं, ये स्वयं को परिवर्तन करने की भट्टी है। आपको जो ये चार दिन का समय मिला है ये आपके लिए बहुत बहुत अमूल्य है, वैल्यूएबल है। इस समय के महत्व को जानकर आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन चार दिन के लिए आप संपूर्ण फरिश्ता बन जाइए, संपूर्ण मौन में रहिए, कंबाइंड रूप से रहिए। मैं और मेरा बाबा, बाबा मेरे से अलग बिल्कुल नहीं हो, बाबा को साथ में रखते हुए वतन की सैर करिए, वतन का अनुभव करिए। तो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के साथ खा रहे हैं, बाबा के साथ सो रहे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा साथ है, साथ ही साथ है। तो बाबा के निरंतर साथ का अनुभव करते हुए ये संपूर्ण मौन भट्टी करिए। ये वरदान भूमि है, तपो भूमि है, परिवर्तन भूमि है, अपनी चेकिंग करनी है। बाबा जो हमको कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, उसके लिए हमको यहाँ पर योग में जब हम बैठते हैं, अमृत वेले बैठते हैं, तो स्वयं की चेकिंग करनी है। तो ऐसा कौन सा संस्कार है जो मेरे को विघ्न रूप है, उस संस्कार को इस महायज्ञ में सदा काल के लिए स्वाहा करके जाना है और अपने में परिवर्तन करके जाना है
और बाबा जो हम बच्चों से चाहता है वो हमको बाबा की आशाएं जो है वो पूर्ण करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करने का ये सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पर हम अंतर्मुखता में रह के अशरीरी बनने का अभ्यास कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस के प्रोग्राम बने हैं, तो मेरा यही कहना है आप सब सीताएं बन जाओ और जो लकीर है शांति बन की उससे बाहर नहीं जाना है, ना बाजारों में जाना है, ना दुकानों पर जाना है, ना माउंट आबू जाना है, लेकिन आप भट्टी करने के लिए आए हो तो आप यहाँ पर भट्टी करो और जो भी प्रोग्राम आपके लिए बना है उसको अटेंशन दे करके एक्यूरेट फॉलो करो, एक्यूरेट क्लास में आओ, अमृत वेला आओ, मुरली में आओ, अन्य जो क्लासेस योग के प्रोग्राम है वो अटेंड करो ताकि लास्ट में आप अपने को फील कर सको, भरपूर समझो और फील करो हम यहाँ से भरपूर होके जा रहे हैं, परिवर्तन होके जा रहे हैं। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति।
हमारे बीच परम आदरणीय दादी जानकी जी भी उपस्थित हैं। हम सब बहुत दिल के प्यार से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि भट्टी के शुभारंभ में हमारी आदरणीय दादियाँ एवं हमारे सभी वरिष्ठों का तिलक एवं गुलदस्ते से स्वागत करें। और अब मैं आदरणीय ईशु दादी जी से अनुरोध करती हूँ। आदरणीय दादी जी भी अपनी शुभकामनाएं देंगी। आदरणीय दादी जी को हम सब ने सदा अंतर्मुखता की गुफा में देखा है और इसीलिए आपके पास अपने विशिष्ट अनुभव भी हैं। आज के दिन भट्टी के लिए भी अपनी शुभकामनाएं देंगी आदरणीय ईशु दादी जी।
ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बेहद घर में पधारे हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत हो, स्वागत हो। मीठे बाबा जी कहते हैं रोज हमें मुरली में मीठे मीठे बच्चे। देखो कितने बाबा के हम प्यारे मीठे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी हर एक को बहुत मीठा बनना है। भले घर गृहस्थ में रहते हो, प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन बहुत रूहानियत का वातावरण होना चाहिए, जो और भी सब देखे तो यहाँ तो ये तो कोई जैसे कि फरिश्ता लगता है। दिव्य बोल, दिव्य कर्म, दिव्य सब कुछ काम दिव्यता संपन्न करो तो बहुत 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 सभी को खुशी होगी और आपके परिवर्तन को देख करके भी कहेंगे वाह ये तो बच्ची में रह करके बहुत ही अच्छे बन करके आए हैं, जैसे कि देवता बन करके आए हैं। देखो मंदिरों में भी लोग जाते हैं देवताओं के मूर्ति के आगे, तो उनों से भी क्या उनों को मिलता है, वो कितने मीठे हैं, कितने दृष्टि उनों की प्यारी है। तो ये सब यादगार हम बच्चों का ही तो है ना, तो इसलिए आप सभी भी इस बच्ची में आए हो तो ऐसे बन करके जाना। ओम शांति।
दादी जी को बहुत बहुत थैंक्स। और अब हम सुनते हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को। आदरणीय दादी जी अब भी इस उम्र में एक युवा की तरह चारों समय दौड़ भाग करके हम सबके लिए एक आदर्श हैं। सेवा सेवा और सेवा ये आपके जीवन का मंत्र हम देख रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी श्रेष्ठ अवस्था और जहाँ भी आप उपस्थित होती हैं एक अनुभूति का दौर ये आपका विशेष लक्ष्य बना रहता है। मैं आदरणीय दादी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज बठी के प्रति हम सब साधना के लिए आए हुए साधकों प्रति अपने वरदानी बोल से हम सबकी झोली भरें। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी
वाले नहीं
आए, नहीं पहुंचे, नहीं
पहुंचे, नहीं
प्रोग्राम मिला है पर पहुंचे आपके बाद पहुंच जाएंगे तो गाएंगे
तो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यह ओम शांति का मंत्र बाप दादा ने हम बच्चों को इसलिए दिया है कि सदा हमें अपना स्वरूप कौन सा, मैं आत्मा शांत स्वरूप जो हमारा अनादि अविनाशी रूप। आज तो ये सारा भाइयों का संगठन देखकर वैसे तो कहेंगे समय समय पर यह बच्चियों का प्रोग्राम हम सब के उन्नति के लिए बाबा के घर में रखा ही जाता है और समय समय पर हम सब को अपने अपने टर्न के अनुसार ये समय मिलता है। विशेष हम अपने जीवन के अंदर उन्नति के लिए हर एक को अपने मन में बहुत से उमंग रहते हैं, परंतु कहने में आता है, कई ऐसे कहते हैं जबकि अपनी कारोबार में है, अपने परिवार के साथ है, दुनिया में रहते हैं और साथ साथ बाबा का बनकर हम जो अपनी जीवन बना रहे हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा समय मिले जो हम एकांत में बैठ करके जैसे बाबा कहते हैं, जैसे हम चाहते हैं वो पुरुषार्थ करके और अपने को ऐसा बनाते जाए। होती है ना इच्छा? होती है या नहीं? होती है। तो हम सब की अथवा सब बच्चों की हर एक की ये इच्छा बाबा हमारी पूरी ही करता है, जो समय समय पर हमें अपने मधुबन में बुला करके, शांतिवन भी मधुबनी है, जो हम रोज बाबा के महावाक्य इतने बड़े संगठित रूप में सुनते हैं। अभी भी हमें आप सबको विशेष रूप से ये बट्टी का चांस जो मिला है, इस चांस के अंदर कहा जाता है जब भी जो चांस मिले उसका हम पूरा पूरा फायदा लें, ऐसा है ना? होता है मन के अंदर, है सबके अंदर ये आशा। अब मिले हैं जो दिन, पांच दिन है ना मुन्नी बहन,
चार दिन
पांचवा दिन आना जाना, ये पांच दिन जो मिला है, पांच दिन के अंदर, वैसे सिंधी में कहावत है पांच में परमेश्वर वैसे तो हम स्वयं ही परमेश्वर के बच्चे हैं। अब बाप के बच्चे, जब हमने बाप को पहचाना, बाप ने हमें अपना बच्चा माना, और बाप कहते हैं मैं आता ही बच्चों के लिए हूँ, बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाप और बच्चे का संबंध, जब के बच्चे बाप को बच्चा आता है तो बच्चे को जो कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी है उसका वर्षा बच्चे को दे देता है। तो हम बच्चे, बाप सारी विश्व का पिता, हम सर्व आत्माओं के पिता, हम सर्व आत्माओं के गति सदगति दाता। अभी बाप हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बने। बाप ने जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए, पावन विश्व बनाने के लिए। और वो पावन विश्व बनाने के लिए पहले ये अपने बच्चों की संख्या इतनी, जो स्वयं बच्चे आज की दुनिया में रहकर ऐसे पावन मूर्ति बने जिनको देख करके सबको ऐसे लगे कि आज की दुनिया में ऐसे किसने इनको बनाया। तो हम बच्चे, जो कुछ बाबा हमें सिखाएं दी है, हम सब हर एक चाहता है जो बाबा कहते हैं हम बाबा को ऐसा बन के दिखाएं। तो ये जो बट्टी के दिन है, जब हम विशेष रूप से बट्टी में आए हैं, बट्टी का अर्थ ही है पकना, जानते हो ना? जब मैले कपड़ों की बट्टी चढ़ाते हैं, एक बार कपड़ों को डाल दिया बट्टी में, फिर निकलेंगे क्या? जब तक उनकी मैल निकल जाए तब तक वो बट्टी में पड़े रहते हैं। तो अभी तो ये तो हम चैतन्य हैं और ये हमारी भट्टी भी ज्ञान और योग की भट्टी है। इसके लिए अगर हम ये थोड़े दिन विशेष रूप से अंतर्मुख रह करके, क्योंकि जितना जितना हम स्वयं के अंदर जो बाबा कहते हैं उन बातों को स्मृति में लाकर जो जो विधियां बाबा ने बताई है उस विधि को अपने अंदर याद करके उसका अभ्यास करते रहेंगे तो उसका हमें इसमें फायदा बहुत मिलेगा। हमें याद है जब हम शुरू शुरू में कराची में रहते थे, शुरू के भट्टी में, तो भट्टी माना हम कहां भी न देखें, भले चलते फिरते रहें, भले कहां भी जाएं, परंतु कहां माना यहां ही जो कुछ भी हम कर्म करें, परंतु हमें याद रहे हम भट्टी में है, अर्थात अंतर्मुखता की भट्टी। जो बाबा हमसे चाहते हैं, जो हम बनने चाहते हैं, बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, याद होगा अभी के मुरलियों में, अभी की मुरली ऐसे लगती है, समय के अनुसार बाबा हमें फिर याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है, बहुत रहम दिल बनना है। बाप कितना रहम दिल है जो ऐसी दुनिया में, पतित दुनिया में बच्चों को दुखी देख करके सर्व को दुखों से मुक्त कराने के लिए ऐसी दुनिया में बाप स्वयं आया है, परंतु केवल बाप विचित्र है जिस कारण कोई उनको पहचान न सके हैं, परंतु हम बच्चे तो कहेंगे हमारे तो सन्मुख में बाप प्रत्यक्ष हुए और प्रत्यक्ष हुए बाप ने हमें स्वयं बैठ करके उन शिक्षाओं से सजाया है। इसलिए भट्टी में रहकर हम अपने अंदर संपूर्ण अंतर्मुखता, अर्थात जिसको हम कहते हैं ना, हम मौन में रहें, भले जो भी कार्य करते हैं, कार्य के समय कुछ बोलना पड़ता है, धीरे आवाज से बोलें, पर अपने आप हम अपने को मौन में रखकर अंतर्मुख होकर अंदर ही अंदर जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप बाप ने हमें स्मृति दिलाई है, जब हम बाप के साथ परम धाम में रहते हैं तो वहां संपूर्ण पवित्र, कोई अपवित्रता का निशान तक नहीं, ऐसी संपूर्ण पवित्रता मन वचन कर्म हमारे अंदर बनी रहे, अंदर हमारे संकल्पों में वह शुद्ध चिंतन के द्वारा ही हमारी चेतन शक्ति अर्थात आत्मा ऐसा शक्तिशाली बनती जाएंगी। जो जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है, जितना जितना हम अंतर्मुख हो करके बाहर से हम ऐसे शांत स्वरूप और शांति जिसके अंदर खुशी भरी हुई हो, वह शांति जो ये अंदर में ज्ञान स्मरण चलते रहे, ज्ञान का खजाना, बाबा ज्ञान रतन बोलते हैं, ज्ञान रतन कितने अमूल्य है, सर्वशक्तिवान भगवान के महावाक्य, ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य, बाबा कितना प्यार से हमें बार बार मीठे बच्चे अभी समय नजदीक आ गया है, अभी तो तुम्हें फरिश्ता बन करके दुनिया के आगे अपना ऐसा स्वरूप रखना है जो हमें देख करके वह देखे बरोबर बाप धरती पर आ गए हैं और हमारे लिए बाप फिर से स्वर्ग की दुनिया इस धरनी पर ला रहे हैं ऐसी सेवा। परंतु ये सेवा हमारी तब होंगी जब हमारी मन सा सदा शुद्ध रहे। हमारे बाबा ने अभी विशेष रूप से संकल्प और समय हमारा वेस्ट न जाए तो इस भट्ठी के अंदर हम अपने पूरे अपने पर ध्यान रखें, कोई भी हमारा संकल्प वेस्ट न जाए। संकल्प में सदा वो श्रेष्ठता और शुद्धता भरी हुई हो। अभी तो आप सबको भट्ठी का लक्ष्य पहले भी चंद्रिका बहन ने भी बहुत स्पष्ट अच्छी अच्छी रीति से बताया है, संतोष बहन ने भी आपको सब समझा दिया है और अभी हम तो इतना ही कहती है, अंतर्मुखता को धारण करते हुए सदा हमें अपना जो ओरिजिनल स्वरूप मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ अपने अंदर के स्वरूप को पूर्ण रूप से स्मृति में रखते हुए एकाग्रता की शक्ति से मन की ऐसी एकाग्रता एक की ही याद बनी रहे और उस याद में रह करके सदा एक रस स्थिति और समय समय क्लासेस के समय क्लास बाकी चलते फिरते हम जो कुछ भी सुने उनका मनन चिंतन और अंदर ही अंदर एकांत अर्थात एक के अंत में लगे रहें। जो जो बाबा कहते हैं मेरा बाबा कौन, बाबा के महानताओं को याद करते हुए बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए वह स्वरूप का अनुभव करते रहें। अगर अपना ये 4-5 दिन अपने को ऐसी स्थिति में रख करके अपना समय और संकल्प ऐसा शुद्ध और सफल करें जो फिर से हमारे पास व्यर्थ जागृति न हो, सदा हमारे संकल्प सफल होते रहे, सदा हमारा समय शुद्ध चिंतन और विश्व कल्याण की सेवा में सफल रहे, ऐसा हमारा प्रैक्टिस अभी अगर जितनी हम करते रहेंगे उतना ही यह परिवर्तन हम वहाँ भी अपने स्थान पर उन्हीं विचारों से उन्हीं प्राप्तियों से चलते रहेंगे जिससे औरों को भी फायदा और आगे के लिए जो हम संपूर्णता बनाने चाहते हैं उसमें सहज सफल होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ भट्ठी के लिए पहुँचे हैं, आपके मन के अंदर भी बहुत उमंग होंगे, उन्हीं उमंगों को भी यथारथ रीति से भट्ठी में अमल करके अपन को भरपूर करते जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप भल पधारे, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। और अब मधुरवाणी ग्रुप आप सभी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। सतीश भाई एवं अन्य सभी हमारे भाई बहने मधुरवाणी ग्रुप आप सबके स्वागत के लिए हम सबके बीच हैं और बड़े नाज से विशेषकर कुमार यहाँ उपस्थित हैं उन्हों को देख करके सभी बहुत खुश हैं क्योंकि ये सारे कुमार आज प्यारे बाप दादा ने भी उन्हों का टाइटल याद दिलाया है कि कुमार सनत कुमार हैं और अधर कुमार भाई उन्हों को भी आज प्यारे बाप दादा ने याद प्यार देते हुए अपने घर गृहस्थी के कारोबार के बीच सेवाओं में और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं विशेष मुबारक दी। तो आप सबके लिए प्यारे बाप दादा की याद मधुबन बेहद घर में आप सबका आवाहन और स्वागत हमारा मधुरवाणी ग्रुप कर रहा है।
चक्कर से बाबा ने बचाया है माया के धन चक्कर से
बीवी बच्चों के चक्कर से और दाल रोटी चक्कर से बाबा ने बचाया है माया के धन चक्कर से
कितना प्यारा जीवन ये कुमार पाए है कितना प्यारा जीवन ये कुमार पाए है मन मन भक्ति करने कुमार आए आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार आधे पूरे बन सकते हैं सीढ़ी से उतरे हैं तो भी ऊंचे चढ़ सकते हैं
साकार ये
आधे पूरे बन सकते हैं सीढ़ी से उतरे हैं तो भी ऊंचे चढ़ सकते हैं अधर कुमार अनुभव का उपहार पाए हैं अधर कुमार अनुभव का करने कुमार आए हैं आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार तपस्या करना है रहना खुश रखना है बाकी जैसा बनना है अब विघ्न विनाशक बनना है युवान तपस्या करना है खुश रहना खुश करना है बाबा जैसा बनना है संस्कारों के संस्कार का विचार लाए हैं संस्कारों के संस्कार का विचार लाए हैं मधुबन भक्ति करने कुमार आए हैं
आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार
आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार बाके प्यारे ब्रह्मा कुमार आए हैं बाबा के प्यारे ब्रह्मा कुमार आए हैं मधुबन भक्ति करने कुमार आए हैं मधुबन भक्ति करने कुमार आए हैं अधर कुमारों को भी ये कुमार बनाए हैं अधर कुमारों को भी ये कुमार बनाए हैं मधुबन भट्टी करने कुमार आए हैं मधुबन भट्टी करने कुमार आए हैं आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार खुशियों की भरमार में स्वागत बेशुमार स्वागत बेशुमार स्वागत बेशुमार
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का, जिन्होंने कुमारों को अपना भविष्य याद दिला दिया है। सारे कुमार बनेंगे राजकुमार। हाँ, कुमार ग्रुप ठीक है ना, ये जो समझते हम कल जाकर राजकुमार बनेंगे, जरा अपना हाथ उठाएं। दादी, ये सारे सिर्फ कुमार हाथ उठाएंगे, सिर्फ कुमार। थैंक यू। और जो अधर कुमार भाई हैं, उन्हों को भी याद दिलाया है कि यहाँ आकर वे भी कुमार बन गए हैं, बाबा को अपना साथी बनाकर बैठे हैं। अधर कुमार भाई अपना हाथ उठा करके हाथ वेव करें। थैंक यू। आशीर्वचन के बिना कोई भी कार्य अधूरा ही रहता है। हमारे बीच हमारी परम आदरणीय मातृवत्सल परम श्रद्धे आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित हैं। आप उमंग और उत्साह का इस उम्र में भी बहता सागर है। कोई बंधन चाहे देह चाहे अन्य बातें आपको न कभी रोक पाई है, न कोई बंधन कभी बांध पाया है। आप हम सबके लिए एक निर्बंधन फरिश्ते के रूप में आदर्श हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होने के बाद भी जितना हल्का हम आदरणीय दादी जी को देखते हैं, अमृत वेला योग से लेकर हर बात में हम आदरणीय दादी जी की जितनी अलर्टनेस देखते हैं, वाकई में दादी जी का एक एक कदम एक एक कार्य हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है। मैं आदरणीय दादी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के इस मौके पर हम सभी आए हुए कुमार और अधर कुमार भाइयों को आशीर्वचनों से अपने वरदानी बोल से आज विभूषित करें, श्रृंगारित करें, अलंकारित करें आदरणीय दादी जी।
ओम शांति, ओम शांति। मेरे भाई सब बोलो ओम शांति। थैंक यू। शांतिवन में बैठे हैं, ओम शांति भवन में चले जाते हैं, वहां से शांति धाम पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, मध्य में भाषण आती है, हमारा ओम शांति भवन पांडव भवन में है, एयरपोर्ट समझा, वहां पर प्लेन में बैठते हैं, चले जाते हैं शांति धाम। बुद्धि में कुछ बातें ऐसी फिक्स हो गई है, तुमको ट्रांसलेशन मिल रही है, इसको ट्रांसलेशन है नहीं, अच्छा इंग्लिश भाई बैठा है, अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ बातें ध्यान पर देती हूँ जो बाबा का आजकल तो इतना हमारे अटेंशन खिंचवाता है, व्यर्थ संकल्प की अंश न रहे। किसी ने अभी प्रसाद बताया, अभी मेरे पास व्यसन कम चलते हैं, मैंने कहा कम चलते हैं जी, नहीं बोलो बोलो नहीं चलते हैं। भट्ठी में अटेंशन रखने से व्यर्थ संकल्प को
एकदम समझ संकल्प से शांत कर दो। समझ संकल्प की वैल्यू को जान। समझ संकल्प में बाबा और ड्रामा विचार करो। एक सेकंड भी विचार करो। मैं हूं आत्मा, यहां है बाबा, ये ड्रामा। हर आत्मा का पार न्यारा है, कोई भी दो आत्माओं का पार एक जैसा नहीं हो सकता है। तब क्यों क्या में नहीं जाएंगे जो संकल्प, क्यों क्या के क्यों में खड़ा कर देते हैं, क्यों में खड़ा कर देते हैं, ये शान नहीं है। मुझे पुरानी बात थोड़ी याद आती है, मैं जब रशिया में गई थी वहां रवाजा क्यों में बहुत खड़े होते हैं, तो हमारी बहन भाई क्यों में खड़े नहीं होते हैं, उनको ऐसा देख। तो क्यों में खड़े होना फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, शान नहीं है, फुल स्टॉप, सेकंड का काम है। एक बाबा यहां यहां फुल स्टॉप देंगे ना काम का नहीं है। एक बाबा पहले तो फुल स्टॉप, एक दस हो गया, सौ हो गया, हजार हो गया, कदम कदम पर बाबा के कमाई करते पदमा पदम भाग्यशाली है। तो एक बिंदी का काम है। एक बाबा को याद करते जो भी कुछ कार्य करते हैं, बाबा को साथी बना करके। ऐसे मीठा बाबा कहता है, मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम साक्षी हो करके ड्रामा में ऐसे पार बजाओ जो तेरे को देख अन्य को प्रेरणा मिले। एक कर्म करना है तो कैसा, क्यों हम आत्माएं दो बातें बंधी हुई है, कौन से ज्ञान मार्ग में आकर के सभी कुमार अदर कुमार को अनुभव है। जितने भी जीवन में मुझे मुन्नि बहन को थैंक दे रही हूं ये दृश्य दिखाने के लिए, मुझे पहला बार ये मैं समझती हूँ, ये पहला बार ये ना अदर कुमार कुमार बटी पहला बार ये ना, वंडरफुल है। मुझे खुशी होती है नई नई बातें मुन्नी बहन करती है, कुमार और अदर कुमार की बटी भाई ठीक है। तो ये बड़ी सुंदर बात है, अदर कुमार बैठे हैं ऐसे नहीं बीबी को साथ लेकर बैठे हैं, नहीं 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 फ्री होकर बैठे हैं। कुमार माना ही है, कुमार माना ही है, ब्रह्मा कुमार अदर कुमार, ब्रह्मा कुमार शिव बाबा का बच्चा है, भोलेनाथ बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा कुमार नाम कोई मैं समझती हूँ सभी को नशा चढ़ा हुआ है, ब्रह्मा कुमार है नशा, मैं नशा ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमार हूं। जैसे हमको देखो दादी प्रकाश मणि, पहले उसको कहते थे ब्रह्मा कुमारी, पर कितने समय के बाद मैंने देखा दादी को ब्रह्मा कुमारी नहीं कहते थे, राजयोगिनी प्रकाश मणि। अभी आप यहां से ब्रह्मा कुमार के रूप को प्रकाश मणि जैसे राजयोगिनी, वैसे आप राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजयोगी है, राजयोगी माना ऐसी भाषणा आए मन कर्म इंद्रिया अच्छा आर्डर में चल रहे हैं, जो भी निमित्त जहां हमारी सेवा है उसमें भी हम राजकुमार हैं। मैं अपन को ऐसे समझती हूँ, मैं सेवा नहीं करती हूँ, सेवा नहीं करती हूँ। सेवा जो बाबा ने को करानी थी तो बाबा ने पहले वायदा कर त्याग तपस्या सेवा। मेरे साथ जो बहनें बैठी है सभी साखियों का कहेंगे, जितना समय सेवा की है त्याग तपस्या से सेवा की है। आज तभी सेवाओं का मैं एक एक दादी का सुन रही थी, यशु दादी का क्या कितना अच्छा बोल रही, मुनि बहन कितना अच्छा सिर्फ बोल नहीं रही है, भाषण नहीं कर रही है, परंतु जो वास्तव में जैसा बाबा चाहता है वो कर रही है। इसलिए आपको खींच के शांतिवन में बुलाया है। और मेरे ख्याल में आज मुनि बहन ने पूछा नहीं, पर मैं तो पूछा भाई सब ठीक बैठे हैं, सबको ठीक रहने का स्थान है, अच्छा मिला है सबको स्थान। मैंने कल परसों देखा जब माताओं का था नंबर ठीक किसकी थी, कैसी बसें बाहर खड़ी है, सब जा रहे हैं मनमनी वन में, कोई मनमनी वन में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई परंतु मेरे बाबा के घर में भगवान का घर, दाता का घर, वहाँ रहने का स्थान हो, दाल रोटी हो, जितना प्यार से खाओ, पर खुशी से रहो, खुशहाल हो, बेहाल नहीं कभी होना है। कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल चल रहा है, कहते मैं खुशहाल हूँ, मेरा मैं क्यों खुशहाल हूँ, खुशी हाल कैसे हो, खुशहाल हूँ। तो ऐसे अंदर से आवाज ऐसे निकले, मैं खुश नसीब हूँ। क्यों कभी उत्तर से नहीं है, नीचे न्यारा होकर के बाबा के प्यारे की शक्ति से साखी होकर के स्वदर्शन चक्र फिर आ रहे हैं, स्वदर्शन चक्र इस अंगुली से बनाया जाता है। इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र गदा पदम, पहले शंख दिखाते हैं उसमें शंख पिछारी हुआ है, स्वदर्शन चक्र ज्ञान की कथा है, कमल फूल समान रहना है, न्यारा उनकी शंख तो आवाज जो होगा ना दूर तक पहुंच सकता है। तो ये प्रैक्टिकली शान वाली बात है। मैं विदेश में भी इस मुझे पता होता था, वहां भी मैं अदर कुमारों को कुमारों कहते बुला दो, मुनि बहन देर से बताया विदेश से बुलाते थे कुमारों अदर कुमारों को ना भाई बहन देर से बताया था ठीक, कोई बात नहीं। मैं यहाँ मुनि बहन को देखती हूँ, वंडरफुल ऐसा देखकर सभा देख करके अभी मुझे तो खुशी का पारा और चढ़ गया है। इसलिए मैं क्या बताऊँ, खुशी है तो किसको खुशी है, खुशी पूछ लो किससे पूछो, दादी बाबा के बच्चों से पूछो। ओके, ओम शांति, ओम शांति
जी। थैंक यू दादी जी। दादी जी ने दोनों ही ग्रुप के विशेषताओं को भी सुनाया और हम सबको विशेष अपने पुरुषार्थ की प्रेरणाएं भी दी हैं। हम आदरणीय दादी जी का बहुत 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 तह दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब माइक मुनि बहन को हम दे रहे हैं, आज सभी को टोली भी मिलनी है।
ओम शांति। अभी आप सभी का परिचय दादियों से करा देते हैं। जितने भी कुमार आए हैं चाहे वो कहीं से भी आए हैं, उठ के खड़े हो जाइए। कुमार जितने आए हैं खड़े हो जाइए और हाथ हिला के अपना परिचय दीजिए। 1000 कुमार आए हैं दादी। बैठिए। अब जितने भी अधर कुमार आए हैं वो खड़े होंगे। अधर कुमार 2000 आए हैं। बैठिए। हाँ, कुमार 1000 है, अधर कुमार 2000। अभी आपका जोन वाइज परिचय कराते हैं। जो भी कुमार अधर कुमार इकट्ठे खड़े होंगे, आप जो दिल्ली जोन से आए हैं वो खड़े होंगे, हाथ हिलाएंगे खड़े होके, कुमार अधर कुमार सब, आगरा साथ में। बैठिए। आंध्र प्रदेश से जो आए हैं वो खड़े होंगे, भोपाल से जो आए हैं वो खड़े होंगे, वो तो थोड़े ही हैं। दिल्ली जोन से बोल दिया मैंने, ईस्टर्न जोन, बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम, बैठिए। नेपाल से जो आए हैं वो खड़े होंगे, इंदौर, दोनों इंदौर, आरती बहन भाई जी दोनों। गुजरात के सब खड़े होंगे, गुजरात के, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र है। पंजाब, पंजाब हिमाचल हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड जो भी है, राजस्थान, मुंबई, बैठिए राजस्थान मुंबई खड़े होइए, यूपी, अभी हॉस्पिटल, बीके कॉलोनी और सेवाधारी अगर नहीं खड़े हुए हैं तो, नहीं तो हॉस्पिटल और बीके कॉलोनी के कुमार अधर कुमार खड़े होंगे, दिखाई तो कम पड़ रहे हैं, नाम तो बहुत आए हुए हैं। ओम शांति। अभी आप सब जो बाबा मिलन में आए हैं और अब भट्टी करने के लिए भी आए हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, बाबा मिलन भी किया भट्टी भी कर रहे हैं, बैठिए। अभी जो बाबा मिलन में नहीं आए केवल भट्टी में आए वो हाथ ऊपर करेंगे, वो भी काफी लोग हैं जो बाबा मिलन में नहीं आए हैं भट्टी में आए हैं। अभी यहाँ पर आपको चार लाइन में टोली मिलेगी, एक लाइन में रतन मुनि दादी देंगे, एक लाइन में संतोष दीदी देंगे, एक लाइन में चंद्रिका दीदी देंगे और एक लाइन में डॉक्टर सविता देंगी। और दूसरी बात जो है आप सबको ये ध्यान पे रहे, वो तो कीर्ति बहन कोऑर्डिनेशन करेंगी भट्टियों का, तो कुमारों की भट्टी सवेरे के समय अलग चलेगी, अधर कुमारों की अलग चलेगी, कुमारों की कॉन्फ्रेंस हॉल में, अधर कुमारों की डायमंड हॉल में, लेकिन शाम की भट्टी सबकी इकट्ठी चलेगी, क्लास भी इकट्ठा चलेगा, पीछे 7 से 7:30 सब दादियां योग भी इकट्ठा कराएगी और दादी जानकी जी भी सबसे 7:30 बजे रोज इकट्ठा मिलेगी और रात का क्लास भी आपका इकट्ठा होगा। सुबह का क्लास कुमारों का अलग है, अधर कुमारों का अलग है। अभी आपको 2-3 डायरेक्शन और है वो बहन जी सुना देती है, लेकिन आप लोग सब एक साथ नहीं उठना, बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे सब आना, 2 लाइन उधर से लगेगी, 2 लाइन इधर से लगेगी, स्टेज पर इधर और इधर टोली लेंगे, पीछे टोली लेंगे, तो इस तरह से कार्यक्रम चलेगा। यज्ञ के प्रति जो लाए हैं वो जिससे टोली लो उसके आगे ही आप रख देना, बाबा के भंडारे में सब जमा हो जाएगा।